आगे फरमाया, इन अल्लज़ीना यगुद्दूना अस्वातहुम इंद रसूलिल्लाह उलाइकल लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक्वा। बेशक वो लोग जो पस रखते हैं अपनी आवाज़ों को रसूल के सामने, ये वो लोग हैं कि जिनके दिलों को अल्लाह ताला ने तकवा के लिए चुन लिया। लहुम मग़फ़िरतुम व अजरुन अज़ीम, इनके लिए बख्शिश भी है और अजर अजीम भी है। यहाँ आप देखिए यगुद्दून अस्वातहुम की बात की, पीछे तुकद्दिमु बैना यदिल्लाह की बात हुई थी अल्लाह और उसके रसूल के बात के आगे, और तीसरा तरफ तीन आमाल की बात हुई, ये ना करो ये ना करो ये ना करो। अब आगे अल्लाह ताला इसके फवायद बता रहा है। पहली बात है कि जो अपनी आवाज़ों को नीचा रखते हैं उनका हाल क्या है, कि उलाइकल्लज़ीनम तहना, ये लफ्ज़ इम्तहना आप लोग तो इससे बहुत ही वाकिफ़ होंगे। मीम हा नून, इसका रूट है महन। महन कहते हैं चांदी को तपाना ताकि खोट अलग हो, हमारे यहाँ मारूफ है ना, पिघला लो चांदी को ताकि असल खुल जाए बाहर से। इसी से लफ्ज़ इम्तहान भी है। क्यों लिया जाता है इम्तहान? ताकि आपके खोट पता चले, ताकि अंदर से ये चीज़ें पता चले। बाप इफ्तियाल में आता है तो इम्तहान जांचना परखना आजमाना। इम्तहन कहते हैं चमड़े को खुला करना, यानी अल्लाह ने खुला कर दिया इनके दिलों को तकवा के लिए। बड़ी खूबसूरत आयत है। तकवा का एक और एंगल आप देखेंगे इसमें, कि जितना बंदे के दिल में तकवा बढ़ता जाता है उसका दिल नेकियां करने के लिए खुलता जाता है, अल्लाह के रास्ते में भाग दौड़ के लिए खुलता रहता है, उसका माल उसके लिए एक रुकावट नहीं बनता अल्लाह से, बल्कि दिल खुलता है। लफ्ज़ इम्तहन ये बता रहा है कि खुलना, तौफीक का मिल जाना, ये असल में शरह सदर है। किस तरीके से शरह सदर हो जाता है कि ऐसा बंदा फिर अल्लाह ताला की तरफ से आए हुए हर हुक्म और हर फैसले को दिल की खुशी से कबूल कर लेता है। तो आप कह सकते हैं कि तकवा क्या है, कि एक इंसान अल्लाह के हुक्मों को मानने के लिए तैयार हो, बोझ नहीं, जबरदस्ती नहीं, जिम्मेदारी नहीं, बल्कि अपने आप को बेहतरीन तरीके से उसके लिए तैयार कर दे। लेकिन मिलेगा उसको जिसके अंदर इखलास होगा, जिसका दिल पाकीज़ा होगा। ऐसे लोगों को अल्लाह ताला मग़फ़रत और अजर अजीम की दावत देता है, खुशखबरी देता है कि देखो तुम अपने दिलों को ठीक कर लो, अल्लाह तुम्हें तौफीक देगा। हमारे असलाफ का हाल क्या था, कि ज़रा कोई नेकी का मौका सुनते और ना कर पाते तो अपना इम्तिहान लेते, कि कहीं हमारे दिल बंद तो नहीं हो गए, कहीं इस हुक्म को सुनकर हम अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रहे, तो अल्लाह ताला ने हमारे दिलों में क्लॉट तो नहीं लगा दिए। तो तकवा क्या है? आपके जिस्म में नेकियों का जो खून दौड़ता है ना, उसको पतला करता है ताकि तेजी से आप भाग सकें, फिर नहीं इंसान थकता। थकना उसने ही है जिसने करना कोई नहीं है। तो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमारे दिलों को तकवा के लिए खालिस कर ले, ना घुटन ना कोई बात, बल्कि इसको खुशी ही करता जाए इंसान अपने लिए। चंद बातें और इम्तहाना के नाते से डिक्शनरी में जो है बहुत ही खूबसूरत। जब कोई शख्स किसी चीज़ का खूगर और आदी बन जाए, तो इसकी खूब मश्क करा दी जाए, यानी आप इसको कह लें एक्सपर्ट। जब किसी काम की आपको प्रैक्टिस हो जाती है ना, तो अरब लोग कहा करते थे इम्तहना फलान अली अमरी कजा, कि फलां इस मामले में इम्तिहान में है। जब कोई शख्स मुसलसल रियाजत और मश्क से किसी चीज़ का आदी बन जाता, इस वक्त वो इस बोझ को आसानी से उठा लेता और इसमें किसी ज़ोफ़ और कमज़ोरी का मुजाहरा नहीं करता था। तो हम अपने आप को चेक करें, पूछें अपने आप से, दिल खुले, तकवा और परहेजगारी के लिए जगह बनी, घुटन ख़त्म हुई, इखलास आ गया, अब मुसलसल प्रैक्टिस से लिखना आ गया, तो क्या अल्लाह के हुक्मों को मानना भी आ गया? करोगे तो क्या मिलेगा? अल्लाह तकवा दे देगा, तुम्हें कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा, मग़फ़रत देगा, तुम्हारे पिछले गुनाह माफ़ कर देगा और तीसरा अजर अज़ीम दे देगा। लेकिन इसके बरक्स कुछ लोग इन्नल्लज़ीना युनादूनक मिन वराइल हुजुरात, बेशक जो लोग पुकारते हैं आपको हुजरों के पीछे से, अक्सरहुम ला याकिलून, इनमें से अक्सर ना समझ है। क्या अल्लाह ताला ने इनका तारुफ कराया, ये बेअक्ल लोग हैं, हुजरों के बाहर से आवाज़ें लगाते हैं। शाइस्तगी थी कोई नहीं, जहालत का दौर था, मक्का जैसे मरकजी शहर में चंद गिनती के लोगों के सिवा कोई पढ़ना लिखना भी नहीं जानता था। तहजीब से दूर, मुआशरत के आदाब से कोरे, सहरा नशीन बद्दू थे, जानवरों के साथ रहते रहते उनकी अपनी यही हालत हो गई थी। एक मौके पे बनू तमीम का एक वफद, तकरीबन 70 से 80 लोग थे उसमें, मदीना में आए। इस वफद में कुछ लोग थे जो इनके सरदार थे। दोपहर का वक्त था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे, कैलूला था। इन लोगों ने अल्लाह के नबी की आमद तक इंतज़ार करने को अपनी शान के ख़िलाफ़ समझा और बाहर खड़े होकर आवाज़ें लगाने लगे, या मोहम्मद उखरुज अलैना, या मोहम्मद उखरुज अलैना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह अकबर। नबी सल्लम बाहर आए, इन लोगों ने शही बिगाड़ते हुए कहा, या मोहम्मद, ए मोहम्मद, हम जिसकी मदह करते हैं उसको मुजयन कर देते हैं और जिसकी मजम्मत करते हैं उसको मायूब बना देते हैं। यानी अपनी तारीफें मारने लगे कि हम आई गए हैं आपके पास तो बहुत बड़ी बात है। इस तरह की बातें करके उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लम को दुख दिया, तकलीफ दी। उन पर यह आयत नाज़िर हुई कि ये कैसे बेवकूफ़ लोग हैं, बाहर आके ऐसी ऐसी बातें करते हैं, अदब से दूर, अदब से खाली, ना इनको कोई होश है। और हुजरात, हुजरत उनसे है, हुजरा चार दीवारी से घिरे हुए एक मकान को कहते हैं जिसमें कुछ सहन भी हो और कुछ हिस्से पे छत लगी हो, जैसे बरामदे की टाइप कह लें। नबी सल्लम की 9 बीवियाँ थीं, हर एक के लिए अलग हुजरा था और आप बारी बारी उनके पास जाते थे, तो यहाँ उसी से मुराद है। रिवायत में था कि ये हुजरे खजूर की शाखों से बने होते थे। सोचिए किस में रहती थी दुनिया की सबसे खूबसूरत औरतें। और इनके दरवाज़ों पर स्याह रंग के ऊनी पर्दे थे, मोटे ऊनी पर्दे पड़े रहते थे। उस दौर में दरवाजे नहीं होते थे, सिर्फ ये ऊनी पर्दे ही थे जो एक को दूसरे के घर से आने से रोकते थे। और कहते हैं 6 से 7 हाथ लंबे होते थे, 10 हाथ, और छत की ऊंचाई 7 से 8 हाथ होती, यानी बिल्कुल इंसानी कद से 1-2 फुट ऊंची जगह होती थी। उसमें ये अल्लाह के नबी की अजवाज रहती थी। अल्लाह ताला कहते हैं इनको कोई बता दे कि वलौ अन्नहुम सबरू हत्ता तखरुज इलैहिम लकान खैरल्लहुम, अगर वो सबर करते यहाँ तक कि आप तशरीफ ले आते तो इनके हक में बेहतर था। बेहतर कैसे था? बेहतर तो हमें यह लगता है ना कि हमें इंतज़ार ना करना पड़े, फौरन निकल आए, लेकिन कभी कभी इंतज़ार करना बेहतर होता है। आपको पता है कि हमारे असलाफ की क्या आदत थी? अपने शागिर्दों को बुलाते फिर बाहर दरवाज़ा ना खोलते, रुक खड़े रखते। क्यों? कहते थे इनकी अना ख़त्म होगी, इनकी अकड़ ख़त्म होगी, इनको इंतज़ार करवाओ ताकि इनके अंदर आजजी आएगी। आपको पता है कि एक बाज़ आलिम ऐसे थे, हिस्ट्री अगर आप पढ़ें, कि पढ़ने के बाद कई कई साल तक सनद नहीं देते थे। सनद जिसको आज के दौर में आप डिग्री कह लें, डिप्लोमा कह लें। क्यों? कहते थे जब इनको ये दे देंगे तो इनके अंदर तकब्बुर पैदा होगा। नंबर एक, अच्छा उस्ताद कौन होता है जो हर लिहाज से शागिर्द की अना को तोड़े, उसको छोटा करार दे के दूसरे को बड़ा करार देने की प्रैक्टिस करवाए। और कहते थे कि इसलिए भी नहीं देते थे कि अगर इनको हमने सनद दे दी तो ये आइंदा इल्म का सिलसिला मुनक़ते कर देंगे। जैसे हमारे यहाँ एक मारूफ बात है जी कि अब क्या करना है, अब तो पढ़ लिया, मिसाल है कोई एमए कर ले तो उसके बाद तो यूनिवर्सिटी नहीं जाता ना। तो इस तरीके से वलौ अन्नहुम सबरू, सहाबा कराम के बारे में आता है, हज़रत इब्ने अब्बास कहते हैं कि कोई आलिम सहाबी से कोई हदीस पूछने के लिए जाता तो उनके मकान पर पहुँच कर इनको आवाज़ या दरवाजे पर दस्तक देने से परहेज़ करता, दरवाजे के बाहर बैठ जाता जब तक कि वो खुद ही बाहर तशरीफ लाएंगे तो उस वक्त उनसे पूछ लूँगा। कहते हैं कि वो मुझे देखकर फरमाते, ए रसूलुल्लाह के चचा जाद भाई, आपने दरवाजे पर दस्तक देकर इत्तला क्यों ना की? यानी उनको हज़रत इब्ने अब्बास का एक मुकाम याद आता था कि वो अल्लाह के नबी सल्लम के चचा जाद भाई हैं, फिर भी किसी से इल्म लेने जाते थे तो आगे से दरवाज़ा नहीं नॉक करते थे। तो इब्ने अब्बास कहते, आलिम अपनी कौम में मिसल नबी के होता है। अल्लाह ताला ने नबी की शान में ये हिदायत फरमाई है कि इनके बाहर आने का इंतज़ार किया जाए, यानी मैं इसलिए नहीं जाता था। अबू वैदा कहते हैं कि मैंने कभी किसी आलिम के दरवाज़े पर जाकर दस्तक नहीं दी, बल्कि उसका इंतज़ार किया कि वो खुद ही जब बाहर तशरीफ़ लाएंगे उस वक्त मुलाकात करूँगा। तो बहरहाल आप देख लीजिए कि हमारा माजी बड़ा खूबसूरत है। आज क्यों हमारी हालत दिन ब दिन उम्मत होने के नाते भी बिगड़ती ही जा रही है? उसकी वजह यह है कि हमारे अंदर अदब और एहतराम कम है। आप उस बंदे से कुछ ले ही नहीं सकते जिसका आपको अदब नहीं। देखिए अदब हम किसका आज करते हैं? पैसे का। पैसा होता है हमारे सामने, हमें उसकी शान दिखती है। हम अदब करते हैं बड़े घरों का, कोई बड़ा इंसान, हम ओहदों का अदब करते हैं, कोई सदर, मिनिस्टर, प्रेसिडेंट आ जाए तो फिर देखिए कि हमारी क्या हालत होती है, या बाज़ दफ़ा रिश्तेदारियों का अदब करते हैं, लिहाज करते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने यहाँ क्या खूबसूरत मुकाम दिया। ये था वो नुक्ता जिसने उन देहातियों और बदुओं को दुनिया के इमाम बना दिया कि उन्होंने अपने अंदर सब्र पाया और उस सब्र से उनको फिर बाद में कितना कुछ मिला। खाली जुबानी इख्तराम क्या होता है? ये तो मुनाफ़क़त है। असल इख्तराम दिल का इख्तराम है। जब तक आप किसी के लिए दिल में इख्तराम महसूस नहीं करते, आप उसके लिए कोई इख्तमाम नहीं करते। आप दुनियावी मामलात पे देखिए, आप किस मेहमान की खातर करते हैं जिसकी आपके दिल में इज्जत होती है ना, कदर है, केयर है, और किसी ऐसे मेहमान जिसके आने पे आप खुशी ना हो तो आप क्या उस दिल से उसके लिए पकाते खाते हैं, घर साफ करते हैं? बात सब आप देखिए कि किसी के आप घर जाते हैं ना तो घर इंतहाई चौपट होता है और उसको पहले से पता भी होता है कि मेहमान आने वाले हैं। उसका चौपट घर इस बात की गमबाजी करता है कि या तो वो इंतहाई सुस्त खातून है या ये साबित करता है कि उसको इसकी परवाह ही नहीं है। बस जब आप किसी को अपनी गाड़ी में ऑफर करते हैं और अगर आपकी गाड़ी इस काबिल नहीं है कि आप उसके अंदर किसी को बैठा सकें, ये सरासर इस बात की दलील है कि आपके दिल में उसकी कोई केयर नहीं है। हर चीज़ को हर बंदा अपने हिसाब से देखे तो उसको कई चीज़ें मिल जाती हैं कि वो अपने आप को कहाँ पर दुरुस्त करेगा और किस तरह से करेगा। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवियों के हुजरात थे, ये मिरवान नामी खलीफा के वक्त में गिरा के मस्जिद में दाखिल किए गए थे और कहते हैं कि वो दिन मदीना वालों के लिए गिरिया और बुका का दिन था। बहुत रोए लोग कि वो घर जिसमें अल्लाह के नबी अपनी बीवियों के साथ रहते थे अब ज़रूरत के तहत मस्जिद में डाल दिए गए। अल्लाह अकबर। तारीख पढ़ा करें, एक दो किताबें बड़ी खूबसूरत, एक तारीख़ मक्का और एक तारीख़ मदीना, बहुत खूबसूरत छपी हुई हैं। इंतहाई कीमती किताबें हैं, तस्वीरें भी हैं उसमें और वैसे भी वज़न भी बहुत है, तो उसमें आप पढ़ के देखें, आपको बहुत कुछ मिलेगा किस तरीके से होता है। आखिर में अब देखिए, वल्लाहु गफूरुर रहीम कह के एहसास दिलाया कि जो ज़ात तुम्हें ये अहकामात दे रही है वो कोई ज़ालिम और जाबिर नहीं है। 70 माओ से ज़्यादा प्यार करने वाली ज़ात है जो तुम्हारे पिछले सारे गुनाहों को माफ़ कर देगी। तुम्हारी तरबियत करना चाहता है अल्लाह ताला, तुम्हें तहजीब सिखाना चाहता है और वो चाहता है कि तुम अच्छे इंसान बन जाओ। अब अगली चंद आयात एक ख़ास वाक्य से रेलिवेंट है, लेकिन उसमें भी बहुत सारे अमल के नुक्ते हैं हमारे लिए। हम पहले वाक्य देख लेते हैं आयतों के साथ साथ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगों जो ईमान लाए हो। इससे क्या पता चलता है? बार बार ईमान वालों को दी जा रही है दावत कि किस तरीके से ये बात करनी है। अच्छा, एक छोटा सा नुक्ता फिर रह ही जाता है, अल्लाह ताला की हिदायत दे कि फिर बातें पीछे से याद आती हैं। ये जो ला तरफ़ स्वा तकुम वाली बात है, तो आप इसमें ऊंची ऊंची बात से खड़े होकर नाते पढ़ना और दुरूद पढ़ना, इसको क्या कहेंगे? बात लोग जो ये सोच के भी करते हैं कि नबी सल्लम की तारीफ़ करें, तो उसमें भी अदब के साथ आयस्तगी से। बात लोग नाते भी इस तरह पढ़ रहे होते हैं कि अल्लाह माफ़ करे, कि कुछ लोग तो ऐसे हैं कि सोना मुखड़ा फुलाने का और फुलाने का। बाद नातों में तो बिल्कुल नबी सल्लम को एक चुलबुला इंसान, बल्कि बाद नाते तो ऐसे मैंने जुमले सुने कैसे लगता है किसी नया दूल्हा आता है तो कमरे में तो जैसे उसकी भलाई लोग लेते हैं, इस तरह बाज़ लोग नातों में नबी सल्लम की भलाई लेते हैं। तो इन्हीं पिछली चंद आयात की रोशनी में आप वो भी जहन में रखिए कि अल्लाह के नबी की तारीफ़ करते हुए भी उनके मुकाम को पहचानना चाहिए, क्योंकि वो आम इंसान नहीं है। आप आम इंसानों की तरह उनको नहीं बुला सकते जैसे कि दूसरे को बुलाते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुन बिनबइन, ए ईमान वालो, अगर आए कोई फासिक तुम्हारे पास कोई ख़बर लेकर तो क्या करो? फतबयनू, तो खूब तहकीक कर लिया करो। बयना युबयनु तबयीन, यानी किसी मामले को खूब अच्छी तरह देख लेना। और नबा अहम ख़बर को कहते हैं, यहाँ हर ख़बर नहीं मुराद, यानी ऐसी ख़बर जिसमें किसी के ख़िलाफ़ कोई बात भी कही गई हो, इस पर एक्शन करने से पहले तहकीक कर लो। क्या करो? तहकीक करो, वरना क्या होगा? अन तुसीबु कौमन, ऐसा ना हो कि तुम पहुंचाओ किसी कौम को भी जहालतिन, जहालत के साथ, यानी किसी कौम के साथ जहालत की वजह से तुम कोई ऐसी बात कर दो कि फतुसबिहु अला मा फअलतुम नादिमीन, कि तुम अपने किए पर पछताने लगो। ऐसे मामलात में थोड़ी सी खैर किया करो। इस आयत के पीछे एक वाक्या है शान नज़ूल में, और वो क्या है, यानी बनु मुस्तलक एक कबीला था, उसका सरदार हारिस इब्ने अबी ज़रार था, नबी सल्लम के पास आया, मुसलमान हो गए। अल्लाह के नबी ने ज़कात अदा करने का हुक्म दिया, इसे भी कबूल कर लिया। کہنے لگا کہ میں واپس جا کے اپنے قبیلے والوں کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اور جن لوگوں نے یہ دعوت قبول کی ان سے بھی زکوٰۃ وصول کر لوں گا، فلاں موقع پہ آپ اپنا کوئی صحابی بھیجیں، وہ ساری جمع شدہ زکوٰۃ لے کر آ جائے۔ یہ ایک سمپل سی بات تھی جو کہ اس دور میں ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ وقت مقرر پر ولید ابن عقبہ ابن ابی معیط کو بنو مستلق کی طرف بھیجا کہ وہ زکوٰۃ وصول کریں۔ اب ہوا کیا، دیکھیے اتفاقات کیسے ملتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں ولید کے ذمے اس قبیلے کا ایک قتل تھا، یعنی ان سے کوئی شخص قتل ہو چکا تھا۔ جب یہ وہاں پہنچے، قوم ان کے استقبال کے لیے آئی، لیکن یہ سمجھے شیطان کیسے بڑے بڑے عقل مند لوگوں سے بعض دفعہ بڑے ہی غلط فیصلے کروا دیتا ہے، یہ سمجھے کہ یہ مجھے مارنے کے لیے آ رہے ہیں۔ جیسے بعض لوگوں کا ویسے جوش ایسا ہی ہوتا ہے، پتہ نہیں چلتا وہ آپ سے پیار کر رہے ہیں کہ آپ کو سے کوئی بدلہ لینا چاہ رہے ہیں۔ یہ ان کو آتا دیکھ کے ڈر گئے اور واپس بھاگ گئے۔ جا کے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا کہ اللہ کے نبی، وہ تو زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے ہیں اور وہ تو میرے قتل کے در پہ ہو گئے۔ اب ان کی زمشن اپنی جگہ تھی، اس کو سوچ کے یہ نہ کہیں کہ یہ فاسق تھے، کیونکہ اس پہ بہت لمبی بات بھی ہوتی ہے کہ اچھا ایک صحابی تھے اور فاسق کا لفظ اس آیت میں ان کے لیے آیا ہے۔ نہیں، صحابہ کرام انسان بھی تھے اور ان کی خطائیں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی ہوئی ہیں، تو لہٰذا ایسی باتوں کو بنیاد بنا کر صحابہ پہ گالی نہ دی جائے۔ واپس آئے، انہوں نے آ کے اللہ کے نبی کو بتا دیا کہ یہ کہانی ہے۔ اب یہ بات سن کے آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا دکھ ہوا ہوگا کہ یہاں سے تو وہ شخص اسلام قبول کر کے گیا، وہاں میرے صحابی کے ساتھ انہوں نے یہ معاملہ کیا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ دے کر صحابی کو بھیجا کہ جائیں اور دیکھو، پہلے حالات معلوم کر لینا، پھر لڑائی کی بات کرنا، جلد بازی نہ کرنا۔ حضرت خالد رات کے وقت وہاں پہنچے، علاقے سے باہر پڑاؤ کیا، کچھ جاسوس بھیجے جا کے دیکھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت ہی پیارا طریقہ لوگوں کو سکھاتے تھے کہ جس جگہ بھی جانا ہو پہلے رات کو وہاں بیٹھو، پھر سنو، اگر صبح اٹھ کے اذان کی آواز آتی ہے، لوگ جماعت کے لیے جاتے ہیں، تو سمجھو کہ یہ مسلمانوں کی بستی ہے، پھر حملہ نہیں کرنا۔ حضرت خالد نے جا کے یہی دیکھا، اذان بھی ہوئی، لوگوں نے نماز بھی پڑھی اور ساری باتیں جو تھی وہ بتا دی گئیں۔ تو اب کیا ہوا کہ انہوں نے حملہ نہ کیا، واپس آ گئے کہ اللہ کے نبی، وہاں تو ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوچ سمجھ کر کام کرنا، اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، یعنی بات لوگ بالکل بے سوچے سمجھے کرتے ہیں نا۔ فرمایا کہ جلد بازی کرنا شیطان کی طرف سے، اور ان آیات میں اسی کا تذکرہ کر دیا کہ دیکھو، اگر تم کوئی ایسی بات کرتے ہو تو بعد میں تمہیں شرمندگی ہوگی۔ اب اس کو آج کے دور میں ہسٹینس کہتے ہیں، کہ بعض لوگ نیکیوں کے معاملے میں تو بتی ہوتے ہیں، سست ہوتے ہیں، جو سارے ان نہیں ہوتے، ففر اللہ پہ عمل نہیں کر رہے ہوتے، لیکن دوسرے کاموں میں بہت جلد باز ہوتے ہیں، ایکشن فوراً لیتے ہیں۔ مجھے پتہ ہے جی، میں نے پہلے کہہ دیا، یہ سٹائل انتہائی برا لگتا ہے، جو میں نے خود بھی بولا اس وقت، لیکن لوگوں کا یہ سٹائل انتہائی برا ہوتا ہے۔ میں نے پہلے کہہ دیا تھا، مجھے پہلے ہی پتا تھا، مجھے سوچ جاتی ہے، یہ سارے جملے نکال دیں، نیگیٹو جملے۔ یقین کریں کہ یہ بولنے پڑتے ہیں بتانے کے لیے کہ جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں سے عمل کی ایک پہلی بات، چند باتیں اور بھی نوٹ کرواتی ہوں۔ پہلی بات، جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ سننے والا فوراً ایکشن نہ لے، پہلے تحقیق کرے۔ اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ دیکھو، وَاعْلَمْ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، خوب جان لو کہ تمہارے بیچ میں اللہ کا رسول ہے۔ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اگر وہ تمہاری اکثر باتیں مان لیا کریں، جیسے کہ ابھی اس صحابی نے آ کے کہا کہ وہ قبیلے والے تو مرتد ہو گئے ہیں، تو اللہ کے نبی اگر مان لیتے، لعنتم، تو تم مشکل میں پڑ جاتے۔ ولکن اللہ حبب الیکم الایمان، لیکن اللہ نے محبوب بنا دیا تمہارے نزدیک ایمان کو۔ وزینہ فی قلوبکم، اور اس نے مزین کر دیا، آراستہ کر دیا، ڈیکوریٹ کر دیا تمہارے دلوں کو۔ وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اور قابل نفرت بنا دیا تمہارے نزدیک کفر کو، فسق کو، اور نافرمانی کو۔ یہ سارے کام کرنے والے، اولئک هم الراشدون، اور یہی لوگ راہ حق پر ثابت قدم ہیں۔ اور یہ ساری خوبیاں کس کو ملتی ہیں، کیسے ملتی ہیں؟ فضلا من اللہ و نعمتا، یہ سب کچھ محض اللہ کا فضل اور اس کا انعام ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا بڑا دانا ہے۔ کتنا پیارا تبصرہ ہے اس آیت پر، کہ بالکل جوش میں نہیں کام کیا کرو، ہوش سے کام کیا کرو، ایسی باتیں نہ کرو کہ جس پہ بعد میں شرمندگی ہو۔ एक्शन करने से पहले तहकीक कर लो, ऐसा ना कि तुम ऐसा काम करो, नबी भी इंसान है, तुम्हारी बातों पे आके अगर हमला करवा देते एकदम उस लश्कर पे तो एक पूरा कबीला फितने में पड़ जाता ना। हम भी बस दफ़ा कुछ इसी किस्म के मामलात करके खुद को भी मुश्किल में डालते हैं, अपने घर वालों को भी मुश्किल में डाल देते हैं। अल्लाह ताला ने इस चीज़ से मना कर दिया कि तुम ऐसा काम ना करो। एक और चीज़ भी पता चलती है, और वो क्या कि बस दफ़ा इंसान अपने जहन से जो चीज़ सोच रहा होता है ना, हालात उसको बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं जैसा कि सहाबी के साथ हुआ, वलीद बिन अबी उकबा के साथ, कि जब उन्होंने सोचा ना कि ये लोग मेरे दुश्मन हैं, उनको सब चीज़ें दुश्मन लगी, हर चीज़ ख़राब लगी, हर चीज़ ख़राब लगी। और जब उन्होंने उसको सही सोचते तो ऐसा नहीं होता। तो बस दफ़ा हम जो कस्में खा खा के रो रो के कहते हैं ना, अल्लाह की कसम मैं सच कह रही हूँ, अल्लाह की कसम, वैसा है उस समय हमारे अंदर की आवाज़ होती है। आप अगर किसी को भी देखना चाहते हैं ना तो साफ आईने में देखें। अगर मेरी डेस्कटॉप की जो स्क्रीन है इसके ऊपर स्क्रैचेस होंगे या कुछ स्टेन्स पड़े होंगे, मैं जो चीज़ देखूंगी मुझे वहाँ वो धब्बा दिखेगा, मैं कहूँगी ये है ही ऐसी, ये आपने कैसी तस्वीर मुझे भेजी है। वो कहेंगे हमने तो ठीक भेजी है क्या, शीशा गंदा है। दिल के शीशे गंदे होते हैं, आपको अच्छी चीज़ें भी बुरी लगती हैं, और दिल के शीशे साफ कर लेंगे आपको बुरी चीज़ें भी अच्छी लगेंगी। एक बहुत ही खूबसूरत इस पर भी एक आर्टिकल था, यानी हस्बैंड वाइफ थे, एक बिल्डिंग में वो मूव हुए, तो जब पहले दिन आई सेट टू वी, उसने अपने किचन की विंडो से देखा तो उसको दूसरी जो हमसाई थी उसकी बालकोनी दिखती थी जहाँ पे उसने कपड़े धोए हुए थे। उसने देखा, कुछ ना बोली। फिर रोज मामूल ये हुआ कि जब वो वहाँ खड़ी होती थी नाश्ते के लिए तो उसको अपनी हमसाई के धुले हुए कपड़े दिखते थे, और वो दिल में सोचती थी। तो एक दिन उसने अपने शौहर से कहा कि ये कैसी है हमारी नेबर, इसको कपड़े नहीं धोने आते, गंदे कपड़े धोती है, कपड़े बहुत गंदे होते हैं। खैर, किस्सा मुख्तसर, कई दिन ऐसे गुजर गए। एक दिन जब वो अपनी उस विंडो में खड़ी हुई तो कहेंगी, ओ थैंक्स गॉड, शुक्र है मेरी नेबर को कपड़े धोने आ गए, आज तो उसने बहुत ही अच्छे कपड़े धोए हैं। तो उसके मियाँ ने कहा कि आज मैंने अपनी खिड़की धोई है, घर की खिड़की का शीशा गंदा था ना, तो उसको वो देखता कि कभी लोगों को अपने दिल से ना देखें, बहुत नुकसान करेंगे, बहुत जुल्म करेंगे आप अपने ऊपर। हम अक्सर लोगों को अपनी नज़रों से देख रहे होते हैं, अच्छे भले लोग हमें बुरे लगते हैं, हमें दूसरों का अच्छा भी बुरा लगता है, अपना बुरा भी अच्छा लगता है। तो इंशाल्लाह जब आप लोगों के साथ अच्छा मामला रखेंगे, अल्लाह ताला खुद ब खुद आपके दिल में लोगों के लिए गलत चीज़ डाल देगा। फिर इसी तरह एक और चीज़ इसमें पता चलती है कि नाजायज़ मुतालबे डिमांड नहीं करने चाहिए। ये जो बात ना कि लो युती हुकुम फ़ी कसीर मिन अल अमरी, हत्ता के नबी सल्लम को भी मजबूर ना किया करो कुछ काम करने पे कि आप ये ज़रूर करें, इसी वक्त करें, मैंने कह दिया वो करें, ये दुरुस्त नहीं है। फिर इसी तरह एक और चीज़ इससे अमल की पता चलती है कि मशवरा तो हम किसी काम में दे सकते हैं, मजबूर नहीं कर सकते। जो कोई ख़ुद कोई काम नहीं कर सकता ना करे, दूसरों का नुकसान नहीं करना चाहिए। बाज़ दफ़ा हम दूसरों को वही मशवरे दे रहे होते हैं जो हमारे हक में बहुत ही अच्छे होते हैं, लेकिन ओवरऑल कॉज को वो नुकसान देते हैं। फिर इसी तरह देखिए जो लफ्ज़ है ना अनित, तुम अनता गुनाह में पड़ना और हलाकत में पड़ना इसके लिए आता है। फिर इसमें एक और बात जो है वो चुगलखोरी की भी आती है। थोड़ा सा सहाबी को गलती लगी तो उन्होंने उस कौम की चुगलखोरी कर दी। नबी सल्लम ने फरमाया दो लोगों को अज़ाब क़ब्र हो रहा है, एक को चुगलखोरी की वजह से और दूसरे को पेशाब के छींटों से ना बचने से। तो इससे पता चलता है कि इन छोटी छोटी बातों पर अमल करने से किसी भी सोसाइटी में बहुत अमन है। इसी पर अगर हम एक आखिरी बात कर लें वो है अफवाहबाजी का। ये जो फासिकुम भी नबाइना ना, इसके नीचे लिख लें इवनिंग अखबारें, जो ख़बरें वो देते हैं फलां अदाकारा का ये हो गया, फलां गुलूकारा का ये हो गया, उस सोसाइटी में हमेशा बेअमनी होगी। आप चाहते हैं किसी मुल्क में किसी शहर में अमन हो तो आप वहाँ के इवनिंग स्पेशल्स बंद करवा दें। वहाँ की ऐसी उछकती हुई चमकती हुई खबरें और ऐसी न्यूज़ के जो लोगों का सुकून बरपा करती हैं उसको ख़त्म कर दें, आप देखेंगे कितना ज़्यादा सुकून हो जाएगा। ऐसी चीज़ें वाकई इंसान को अपनी ज़िंदगी में लानी चाहिए। बस औरतों की आदत है छोटी छोटी बातों पे शोहरों के कान पड़ती हैं, चुगलखोरियाँ करती हैं, बस हर बात पे मैके का नंबर मिला लेती हैं। अब ये कह दिया सास ने, अब नन ने ये कह दिया, अब इनका मिजाज ऐसे बदल गया, अपना ही नुकसान करता है इंसान। आप करके देख लीजिए, अपने अंदर अखलाकी बड़ाइयाँ लाइए, अपने आप को आला अखलाक से हामिल करें, सबसे ज़्यादा आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा, आपका हिस्टीनेस ख़त्म हो जाएगा, आप इतने मुतमईन हैं। जो कोई करता करे, मुझे क्या, मैंने किसी की बात के ऊपर اس طرح کا معاملہ نہیں کرنا کہ جو مجھے دکھ دے. کسی کی بھی کوئی بات جب آپ کو دکھ دیتی ہے نا, آپ کو تکلیف دیتی ہے, تو آپ فیل کریں کہ اس سے آپ خود اپنی زندگی کے اندر ایک بہت چبھن پاتے ہیں. کہتے ہیں نا کہ عقل نہیں تو موجیں ہی موجیں. عقل والا بندہ جو ہوتا ہے بعض دفعہ وہ ہر بندے کے معاملے کو سنتا ہے, سوچتا ہے, غور کرتا ہے, پھر وہ دکھی رہتا ہے. تو بہرحال یہ ایک ہلکا سا اوور ویو تھا اس بات کا کہ ہماری معاشرتی زندگی کیسی ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ کسی بھی سوسائٹی میں بہت ہی زیادہ امن ہو. ایک تو مشکل لفظ, مشکل سمراج یہ کہ نئے لفظ تھے, جیسے اولائک ہم الراشدون. رشد کس کو کہتے ہیں؟ رشد حق پر ایسی ثابت قدمی کو کہتے ہیں جس میں پختگی ہو, بندہ تذبذب کا شکار نہ ہو. اور رشد چٹان کو بھی کہتے ہیں. اور حبب وزینا وکرہا, آپ دیکھیں ان تین لفظوں کے بعد لہو کا لفظ آیا, یہ بہت ہی پیاری چیز ہے. اس کو ہم تھوڑا سا دوبارہ دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کے دل کو ایمان کے لیے کب چنتے ہیں. جیسے ہم چہروں کو سجاتے ہیں نا, اس طرح دل بھی سجتا ہے. چہرے کا خوبصورتی کیا ہے؟ اچھا رنگ لگا لیا آپ نے, کوئی میک اپ کر لیا, کنگھی کر لی, سرما لگا لیا نا, لیکن دل کے اندر ایمان اور اس کے بعد اس کی ڈیکوریشن کب ہوتی ہے؟ جب دل بالکل صاف ہوتا ہے, دل چمکتا ہے. اس میں ایک اور کہاوت بھی بلکہ مجھے یاد آ گئی کہ ایک دفعہ مقابلہ ہوا چائنیز لوگوں کا, ایک اور قوم تھی, کہ کون خوبصورت بلڈنگ بناتا ہے. ایک ملک والے تھے, انہوں نے خوب بڑا ایک سٹرکچر بنایا, بڑی پیاری بلڈنگ بنائی, اور کئی سال یا کتنے مہینے اس پہ کام کرتے رہے, شیشہ منگوایا. جبکہ جو دوسری قوم تھی, غالباً چائنیز قوم تھی, وہ کچھ بھی نہیں کر رہے تھے. لوگ بڑے حیران تھے کہ یہ کیا کریں گے, اور دونوں اپنا کام جیسے یوں کر رہے تھے نا کہ بیچ میں آپ مثال ہے کہ پردہ ڈال دیں, ایک قوم ادھر ہے ایک ادھر ہے, آپ نے بھی اپنا ایک ڈسپلے دینا ہے, انہوں نے بھی دینا ہے. پہلی قوم نے خوب محنت کی, بڑی خوبصورت بلڈنگ بنا رہے تھے, دوسرے کچھ بھی نہیں کر رہے تھے. خیر جب وہ وقت آیا مقابلے کا, تو انہوں نے کہا جی پہلے آپ کریں. جب وہ اس کا پردہ ہٹایا, اس قوم نے واقعی بہت ہی خوبصورت بلڈنگ بنائی ہوئی تھی. لوگوں نے کہا ماشاء اللہ, ایک شاہکار ہے, ایک نمونہ. جب ان کی باری آئی تو ان کو کہا تم کیا کرو. پردہ ہٹایا تو ہوا کیا کہ اسی بلڈنگ کا عکس ان کے آئینے میں پڑ کے ایک خوبصورت ریفلیکشن ایسی دے رہا تھا کہ اس سے بھی زیادہ ویو ان کی دیوار پہ بن گیا, اور یہ مقابلے کو جیت گئے. یہ پتہ نہیں کسی کی کہاوت ہے, تو انہوں نے اسے ثابت یہ کیا ہے کہ بعض لوگ اتنی محنت کر رہے ہوتے ہیں, لیکن تزکیہ جو ہوتا ہے نا, یہ جو دیوار ہے یہ دل کی دیوار ہے, تزکیہ ہوتا ہے نا, وہ ساری خوبصورتیوں کا ریفلیکشن آپ کے اندر لاتا ہے. دوسری طرف آپ اس عمارت کو بنانا, یہ کہ آپ تہجد پڑھنے لگ گئے, آپ کی نیکیاں آ گئیں, آپ قرآن ہی قرآن, بعض لوگ قرآن سے جڑتے ہیں, بڑے درست ہونے لگتے ہیں. آپ کی خوبی کسی کو کیا لگے, آپ دل کا آئینہ اتنا خوبصورت کریں کہ دوسرے اس کے اندر آپ کی تصویر کو پائیں. اور اللہ تعالیٰ بندے کے دل کو پسند کر لے, ایمان کے لیے زینت دے دے, اس سے خوش قسمت کوئی لوگ نہیں ہے. جتنا آپ دیکھیں گے آپ کے دلوں میں یہ آئے گا, اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو آپ پائیں. دن بدن آپ کو لگے گا کہ آپ کا دل کھلتا جا رہا ہے. تعصب کا تو چھیٹا نہیں پڑے گا, کوئی خود پسندی, کوئی خاندانی نسبت اس کی نہیں پڑے گی.